श्यामली अचानक जैसे अपने ही एहसासों से घबरा गई। उसने धीरे से विश्वनाथ के हाथ को हटाया और उठकर खिड़की की तरफ चली गई। चादर अब भी उसके बदन से तिरछे अंदाज में लिपटी थी, सीने से आधा पेट ढकती हुई, एक पैर को छपाती हुई। दूसरा पैर और आधा पेट रोशनी में साफ दिख रहा था। वो खिड़की के पास जाकर ठहर गई। उसकी पीठ अब विश्वनाथ की ओर थी। घुटनों तक झूलते उसके लंबे घने खुले बाल उसकी कमर और पीठ का ज्यादातर हिस्सा ढक रहे थे, जैसे प्रकृति ने खुद पर्दा कर दिया हो। विश्वनाथ की नज़र वहीं ठहर गई। वो उसकी कमर ठीक से देख नहीं पा रहा था, बालों की उस लहरदार दीवार के पीछे छुपी हुई थी। लेकिन शायद यही अधूरापन उसे और भी आकर्षक बना रहा था। कमरे की हल्की हवा में उसके बाल हल्के हल्के हिल रहे थे। चादर का किनारा उसकी जांग के पास सरकता हुआ रुक गया था। विश्वनाथ का गला सूख गया। उसने अनजाने में होठों पर जीभ फेर ली। दिल की धड़कन अब पहले से तेज थी। उनके सीने में एक कसाव सा उठा और नीचे बदन में भी एक भारीपन, एक तनाव सा महसूस हुआ, जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रहा था। श्यामली, उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई थी। वो खिड़की के शीशे में अपनी ही धुंधली परछाई देख रही थी। उसकी सांसें अनियमित थी। अभी कुछ देर पहले जो स्पर्श उसके कंधे से उतरकर बांह तक आया था, उसकी याद अब भी त्वचा पर जैसे धड़क रही थी। उसे लगा जैसे हवा भी गर्म हो गई हो। आप ऐसे मत देखिए, उसने बिना पलटे कहा। कैसे? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। जैसे, वो रुकी, जैसे मैं खुद को भूल जाऊं। विश्वनाथ उठकर खड़ा हो गया, दो कदम आगे बढ़ा, लेकिन दूरी बनाए रखी। उसने देखा उसके एक पैर की उंगलियां हल्की सी सिकुड़ रही थी, जैसे वो खुद को संभाल रही हों। तुम्हें पता है, उसने बहुत धीमे कहा, जब तुम यूं खड़ी होती हो तो लगता है पूरी रात तुम्हारे इर्द गिर्द ठहर गई है। श्यामली का दिल और तेज धड़कने लगा। वो खुद से लड़ रही थी। एक हिस्सा चाहता था कि वो पलटकर उनकी बाहों में चली जाए, दूसरा हिस्सा उसे यहीं रोक रहा था, इस बेचैनी को महसूस करने के लिए। विश्वनाथ जी, उसकी आवाज में कंपकंपी थी, इतना करीब मत आइए। मैं दूर ही हूं, उसने कहा, लेकिन आवाज में चाहत छुपी नहीं थी। उसकी नजर उसके बालों के उस घने पर्दे पर टिक गई। मन किया उन बालों को हटाकर उसकी कमर को छू लें, पर उसने खुद को रोका। ये चाहत अब सिर्फ शरीर की नहीं रह गई थी, इसमें इंतजार का स्वाद भी खुल गया था। श्यामली ने धीरे से चादर को और कस लिया। उसके भीतर एक अजीब सी गर्मी दौड़ रही थी। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। आपको अंदाजा है, उसने बहुत धीमे कहा, आपकी नजर क्या कर रही है मुझ पर? विश्वनाथ ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर बताऊं तो शायद तुम भाग जाओ। नहीं भागूंगी, उसने फुसफुसाया, बस शायद रुक भी ना पाऊं। कमरे में खामोशी गहराने लगी। उनके बीच की दूरी अब सिर्फ कुछ कदमों की थी, पर उस दूरी में धड़कनों का शोर भरा था। विश्वनाथ ने अपने सीने पर हाथ रखा, जैसे खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे हों। तुम्हें देखकर, उसने सच्चाई से कहा, कभी कभी लगता है मैं खुद पर काबू खो दूंगा। श्यामली ने धीरे से पलकों को खोला। वो अभी पीठ किए खड़ी थी, पर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तो खो जाइए, उसने बहुत हल्के स्वर में कहा, मैं यहीं हूं। उसके शब्दों में निमंत्रण भी था और भरोसा भी। विश्वनाथ एक कदम और आगे बढ़े। अब वो इतने पास थे कि उसकी सांसों की गर्माहट महसूस कर सकते थे। उसने धीरे से उसके बालों के सिरे को उंगलियों में थामा, बस हल्के से। श्यामली का बदन जैसे बिजली सा कांप गया। उसकी सांस रुककर फिर तेज हो गई। दिल की धड़कन अब दोनों को सुनाई दे रही थी। रात और गहरी हो गई थी, और उस पल में चाहत सिर्फ दिखाई नहीं दे रही थी, महसूस हो रही थी। विश्वनाथ ने उसके बालों को हल्के से पीछे सरकाया। घने काले बाल कंधों से हटते ही उसकी गर्दन और कमर की पतली लकीर रोशनी में उभर आई। श्यामली की सांस जैसे वहीं अटक गई। उसने महसूस किया, अब विश्वनाथ और उसके बीच कोई पर्दा नहीं था। अब भी दूर हूं? विश्वनाथ ने उसके कान के पास झुकते हुए बहुत धीमे स्वर में पूछा। उसकी आवाज की गर्माहट उसकी त्वचा से टकराई तो श्यामली के हाथ अपने आप चादर को और कसकर पकड़ बैठे, पर वो हटी नहीं। आप, उसने हल्की हंसी के साथ कहा, बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं। सिर्फ तुम्हारे लिए, उसने फुसफुसाकर जवाब दिया। उसकी उंगलियां उसकी बांह तक आई, धीरे ठहर कर, जैसे हर स्पर्श से पहले इजाजत ले रहे हों। श्यामली ने आंखें बंद कर ली। उसके भीतर जो झिझक थी वो अब पिघलने लगी थी। विश्वनाथ ने उसके कंधे पर होंठ रखे, बस एक हल्का ठहरा हुआ चुंबन। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई उतावलापन नहीं, बस एहसास। श्यामली का बदन हल्का सा पीछे झुका, जैसे वो खुद को रोकना भूल गई हो। उसकी उंगलियां खिड़की के फ्रेम को पकड़ते पकड़ते ढीली पड़ गईं। मुड़ो मेरी तरफ, उसने धीरे से कहा। इस बार उसने इनकार नहीं किया। वो पलटी, धीरे नजरें झुकाए। चादर अब भी उसके आधे बदन के इर्द गिर्द थी, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वो किसी भी पर्दे से छुप नहीं सकती थी। दोनों कुछ पल बस एक दूसरे को देखते रहे। विश्वनाथ ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में थाम लिया। उसकी उंगलियां उसके गालों पर ठहरी, नर्म स्नेह से भरी। तुम्हें छूता हूं तो लगता है जैसे कोई सपना सच हो रहा हो, उसने कहा। श्यामली की पलकें कांपी और मुझे लगता है, उसने धीमे से जवाब दिया, मैं हर बार पहली बार महसूस करती हूं। उनके बीच की दूरी खत्म हो गई। विश्वनाथ के होंठ उसके होंठों से मिले, धीरे गहराई से। कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक लंबा थमता हुआ पल, जैसे दोनों उस चुंबन में अपने सारे सवाल सारी चाहते घोल देना चाहते हों। श्यामली ने इस बार खुद उसके कंधों को पकड़ लिया। उसकी उंगलियां हल्के से कस गईं। अब वो पीछे नहीं हट रही थी, वो साथ चल रही थी। विश्वनाथ ने उसे अपने करीब खींच लिया। चादर का किनारा जमीन पर सरक गया, पर उसने उसे तुरंत फिर से उसके चारों ओर समेट लिया। एक सुरक्षात्मक अपनापन भरा इशारा। तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही, उसने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। वो मुस्कुरा दी। आपके साथ, उसने हल्की शरारत से कहा। नहीं, उसने उसके माथे पर चुंबन रखा, फिर उसके गाल पर, फिर उसकी ठुड्डी के पास ठहर गए। कमरे में अब सिर्फ धीमी सांसों की आवाज थी। श्यामली ने अपना सिर उनके सीने पर टिका दिया। आज रात, उसने फुसफुसाया, मुझे बस महसूस करना है, बिना किसी डर के। विश्वनाथ ने उसे बाहों में भर लिया। मैं यहीं हूं, उसने कहा, और कहीं नहीं। उसकी उंगलियां उसकी पीठ पर हल्के हल्के घूमती रहीं, जैसे किसी अनकहे वादे की रेखाएं खींच रही हूं। रात बाहर खामोश थी, अंदर चाहत अब शब्दों से आगे बढ़ चुकी थी, और वो दोनों एक दूसरे में धीरे धीरे खोते जा रहे थे, बिना जल्दबाजी के, बिना किसी सीमा को तोड़े, बस एहसासों की गर्माहट में लिपटे हुए।